ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्राएं अध्याय संख्या 9 और प्यार 117 से 126 तक। 126 बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका पहले उच्चारण करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तुम्हें साक्षात सही कृष्ण जाना निज कर्म यारे जाना से जाने तुमरीला मर्म। तुम्हें साक्षात से कृष्ण जान निज कर्म यारे जाना से जाने तुमार लीला मर्म। तुम्हें साक्षात से कृष्ण जान निज कर्म यारे जाना से जाने तुमार लीला मर्म। आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। आप ही अपने कार्यों के प्रयोजन को समझते हैं, या फिर जिसे आप यह ज्ञान प्रदान करें वह भी आपकी लीलाओं को समझ सकता है। तात्पर्य, स्थूल कुंठित इंद्रियों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को तथा उनकी लीलाओं को नहीं जाना जा सकता। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करके अपने इंद्रियों को निर्मल बनाना आवश्यक है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं, तब भगवान के दिव्य रूप नाम गुण तथा लीलाओं को समझा जा सकता है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद 2:23 तथा मुंडक उपनिषद 3:2:3 द्वारा हुई है। यमिवैश्य वृणत तेन लभ्यस्ते ऐश आत्मा विवृणत ते तनु स्वाम। जिस पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो जाती है वही उनके दिव्य नाम गुण रूप तथा लीलाओं को समझ सकता है। तो श्री चैतन्य चरितामृत पे कुछ बोलने से पहले सभी भक्तों की आशीर्वाद की कामना करते हैं, विशेषकर सभी वरिष्ठ भक्तों की जो बैठे हैं। ये जो प्रसंग चल रहा है श्री चैतन्य चरितामृत का, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा है बेसिकली, ये साउथ इंडिया का टूर है श्री चैतन्य महाप्रभु का। जो श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आने के बाद सभी भक्तों से रिक्वेस्ट किए थे कि वो अपने ब्रदर विश्वरूप को मिलने देखने जाना चाहते हैं दक्षिण भारत, क्योंकि उनको ऐसा पता चला था कि विश्वरूप दक्षिण भारत में है, और उस यात्रा पे निकले थे ढूंढने के लिए। और बेसिकली ये तो उनको पता था कि विश्वरूप शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो पूरे साउथ इंडिया टूर पर जाना चाहते थे बहुत कारणवश। तो उनमें से अब तक जो हमने इसमें पढ़ा है वो ये था कि महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा में आए और घर घर गांव गांव पूरा का पूरा कह सकते हैं तालुका ज़िला जो भी है डिलीवर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक ये चीज़ हो रही है। दूसरी, इसी पूरे के पूरे टूर में बहुत से ऐसे दर्शन प्रस्तुत किए हैं जिसमें कि महाप्रभु का बेसिकली एक कन्वर्सेशन हो रहा है। उसमें बुद्धिस्ट मिलते हैं, बौद्ध धर्म वाले मिलते हैं, फिर मायावादी मिलेंगे, फिर आपके शैवाइट्स मिलते हैं, फिर अभी जो ये जो प्रसंग चल रहा है जिसका अभी हमने जस्ट उच्चारण किया, ये प्रसंग है जब महाप्रभु 4 महीने के लिए चतुर्मास में रुके हुए थे वेंकट भट्ट के यहाँ। ये वेंकट भट्ट एक श्री वैष्णव थे जिनके यहाँ पे रुके थे, और जिनके जो पुत्र थे वो 6 गोस्वामियों में से 1 गोस्वामी थे, उनका नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो ये जो 4 महीने का एक बहुत ही गहरा संघ महाप्रभु ने वेंकट भट्ट और उनके परिवार को दिया, ये इस चैतन्य चरितामृत का एक बहुत प्रमुख अंग बनता है, पूरे के पूरे मध्य लीला का एक सेक्शन है। तो इसे जस्ट पहले सेक्शन में आप लोग ने अगर जो पिछली क्लास हुई होगी उसमें ये श्रवण जरूर किया होगा कि किस प्रकार से अभी ये वार्ता शुरू हुई है वेंकट भट्ट के बीच में और महाप्रभु के बीच में। और अब जो ये वार्ता चल रही है ये बहुत ही रोचक वार्ता है। मैं आपको पीछे से बताता हूँ 117वें प्यार से। तो ये वार्ता जब शुरू हुई थी तो भगवान ने ऐसे ही मजाक में जस्ट इन द जोकिंग वे वेंकट भट्ट को लक्ष्मी और नारायण के बारे में कुछ हल्का सा एक वो दिया था, जोक दिया था। क्या बोला था मैं आपको ये 111 से पढ़ रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने भट्ट से कहा, तुम्हारी आराध्य देवी लक्ष्मी सदैव नारायण के वक्षस्थल पर विराजमान रहती है और वे निश्चय ही सृष्टि की सबसे अधिक पतिव्रता स्त्री है। किंतु मेरे स्वामी तो ग्वालपाल कृष्ण हैं, जो गायों को चराने में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों है कि लक्ष्मी ऐसी पवित्रता स्त्री होते हुए भी मेरे प्रभु का साथ चाहती है? ये महाप्रभु ने प्रश्न पूछा था वेंकट भट्ट से, जस्ट एक जोकिंग वे में पूरी कन्वर्सेशन शुरू हुई थी। आगे कह रहे हैं, लक्ष्मी जी ने कृष्ण की संगति प्राप्त करने के लिए ही वैकुंठ लोक के सारे सुख त्याग दिए और दीर्घ काल तक व्रत नियम का पालन करके अपार तपस्या की। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि काली नाग कि किस तरह आपके चरण कमलों की धूली प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए तो लक्ष्मी देवी को भी समस्त इच्छाओं को त्याग कर और व्रत करके सदियों तक तपस्या करनी पड़ी थी। निस्संदेह हम नहीं जानते कि किस तरह काले नाग को ऐसी अवसर मिल सका। ये जो प्रार्थना महाप्रभु बोल रहे हैं, ये नागपत्नियों ने किया था दशम स्कंद में। आगे बोल रहे हैं वेंकट भट्ट ने बोला आगे। तब वेंकट भट्ट ने कहा, भगवान कृष्ण तथा भगवान नारायण एक ही रूप है, किंतु कृष्ण की लीलाएं अपने क्रीड़ा रस के कारण अधिक आस्वाद्य हैं। ये वेंकट भट्ट का रिप्लाई था। चूंकि कृष्ण तथा नारायण एक ही व्यक्ति हैं, अतः कृष्ण के साथ लक्ष्मी का संग उनकी पवित्रता धर्म का भंग नहीं करता। प्रत्युत यह तो अत्यंत आनंद की बात थी कि लक्ष्मी जी ने भगवान कृष्ण का साथ करना चाहा। और ये 117 से आज शुरू होता है। तो अभी तक कॉन्टेक्स्ट क्या है कि लक्ष्मी जी की बहुत ही एक प्योर और एक बहुत ही डिवाइन पोजीशन है श्री संप्रदाय में, और इसका आपको थोड़ा सा प्रमाण भागवतम में मिलता है। भागवतम के 8वें स्कंद में जब ये सागर मंथन होता है तो सागर मंथन में बहुत सी वस्तुएं निकलती हैं, तो उसमें से फिर लक्ष्मी जी भी निकलती हैं। तो बताया जाता है लक्ष्मी जी जब निकलती हैं तो उस लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए सभी देवता असुर भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी यहाँ पे अपना वर खुद चुनना चाहती थी, स्वयंवर खुद चुनना चाहती थी। तो जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो अपने हाथों में कमल पुष्प की माला हाथ में लेकर इधर उधर विचरण करने लगी, जिससे कि चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। लज्जा से मुस्कुराती हुई कुंडलों से गाल अलंकृत होने के कारण वे अत्यंत सुंदर लग रही थी, और वो पूरी इस असेंबली में सभा में घूमने लगी और ये देखने के लिए कि कौन मेरा एक परफेक्ट मैच है, कौन मेरा परफेक्ट हस्बैंड है जो बन सकता है इसमें। उन्होंने सबको देखा वहाँ पे, गंधर्वों, यक्षों, असुरों, सिद्धों, चारणों तथा सर्वलोक के वासियों के बीच विचरण करती हुई धन की देवी लक्ष्मी देवी उन सबका निरीक्षण कर रही थी, किंतु उनमें से कोई भी उन्हें समस्त स्वाभाविक उत्तम गुणों से युक्त नहीं मिला। उनमें से कोई भी दोषों से रहित ना था, अतः वे किसी की भी शरण ग्रहण नहीं कर सकी। सबको ढूंढा, सबको पूरा इंस्पेक्ट किया, अच्छे से देखा, लेकिन कोई भी लक्ष्मी जी का मैच का नहीं मिला वहां पे। आगे कहते हैं, सभा का निरीक्षण करते हुए लक्ष्मी जी ने इस प्रकार सोचा, जिसने महान तपस्या की है उसने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई। ऐसे उन्होंने एनालिसिस करना शुरू किया। पहला गुण क्या देखा कि हो सकता है इस पूरी सभा में बहुत बड़े बड़े तपस्वी थे वहां पे, और उस तपस्वी में बता रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत तपस्या भी की हो लेकिन अपने क्रोध पर कोई विजय नहीं पाई, तो इस कारण से इस पॉइंट पे रिजेक्ट हो गए। आगे कह रही हैं, किसी के पास ज्ञान है तो वो भौतिक इच्छाओं को नहीं जीत पाया। मतलब ज्ञान है लेकिन भौतिक इच्छाएं एग्जिस्ट करती हैं, तो सेकंड केस में वो रिजेक्ट हो गया। कोई महान पुरुष है तो उसने काम इच्छाएं नहीं जीती। कोई बहुत महान पुरुष है लेकिन उसने महान इच्छाएं काम इच्छाएं को नहीं जीता। यहाँ तक कि महापुरुष भी किसी अन्य बात पर आश्रित रहता है, फिर वह परम नियंता कैसे हो सकता है? क्योंकि महान से महान व्यक्ति भी संसार में अगर है ना, किसी न किसी पे वो आश्रित रहता है, तो फिर वो सुप्रीम कंट्रोलर परम नियंता कैसे हो सकता है? ये एक और क्राइटेरिया बताया। आगे कहती हैं, आगे बताते हैं श्रीदेव गोस्वामी, भले ही किसी के पास धर्म का पूरा ज्ञान ना हो फिर भी वह समस्त जीवों पर दयालु नहीं हो सकता। किसी में चाहे वह देवता हो या मनुष्य त्याग हो सकता है किंतु वह मुक्ति का कारण नहीं होता। भले ही किसी में महान बल क्यों ना हो फिर भी वह नित्य काल की शक्ति को रोकने के लिए अक्षम रहता है। भले ही कोई भौतिक जगत की आसक्ति से विरक्त हो चुका हो फिर भी वह भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। अतः कोई भी व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है। लास्टली जब वो भगवान को जब सिलेक्ट करने वाली उससे जस्ट पहले एक और आता है, हो सकता है कि कोई दीर्घायु हो किंतु वह अच्छे आचरण वाला या मंगलमय न हो। किसी में मंगलमय तथा अच्छा आचरण दोनों ही पाए जा सकते हैं किंतु उसकी आयु निश्चित नहीं होती। यद्यपि शिव जी जैसे देवताओं का जीवन शाश्वत होता है किंतु उनकी आदतें अमंगल सूचक होती हैं, यथा शमशान में वास। अन्य लोग सभी प्रकार से योग्य होते हुए भी भगवान के भक्त नहीं होते। इतने सारे गुणों का विश्लेषण करने के बाद फाइनली लक्ष्मण जी ने सिलेक्ट किया कि भगवान विष्णु को अपना हस्बैंड, क्योंकि भगवान विष्णु उसमें सारे वो गुण हैं जिसको लक्ष्मी जी ढूंढ रही थी। इसका और विस्तार से वर्णन आता है जब भक्ति रसामृत सिंधु में जब शिला रूप गोस्वामी पाद ने वहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है पूरा का पूरा, इवन जीव गोस्वामी जी ने भी इसका एनालिसिस किया हुआ है, ये आपको भागवतम के फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर में मिलेगा 28वें वर्स में। वहाँ पे एनालिसिस में बताया गया है कि भगवान कृष्ण में 64 गुण हैं, 64 क्वालिटीज, उसमें से 60 क्वालिटीज जो होती है वो नारायण पोजेस करते हैं, नारायण के पास होती हैं 60 क्वालिटीज, नारायण के पास सुपर एक्सीलेंट क्वालिटीज जो होती हैं। लेकिन ऐसी 4 क्वालिटीज हैं जो भगवान नारायण के पास नहीं है, जो भगवान कृष्ण के पास होती है। कोई बता सकता है कौन कौन सी हैं? यस सर, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। ये जो 4 क्वालिटीज हैं, 4 गुण हैं, ये भगवान कृष्ण में एक्सक्लूसिवली मिलते हैं, ये भगवान नारायण में नहीं मिलते हैं। ये एकमात्र कारण था, एक कारण लक्ष्मी जी को भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होने का। दूसरा ये भी एक आश्चर्य की बात यहाँ ये थी कि भगवान जब प्रकट होते हैं संसार में तो आप देखेंगे जो भगवान की लीलाएं हैं वो समा उधर बहुत ज़्यादा मॉरल प्रिंसिपल्स पे एग्जिस्ट नहीं करती, नैतिकतावाद पे एग्जिस्ट नहीं करती है। लोग कुछ हद तक भगवान श्री रामचंद्र को भगवान मान लेते हैं, नारायण को भगवान मान लेते हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान मानना थोड़ा कठिन है, इस चीज़ को कठिन है फ्रॉम द मंडेन पॉइंट ऑफ मोरालिटी। एक नैतिकता के आधार पे भगवान को भगवान मानना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही एक राइटर थे, एक मिशनरी थे बेसिकली, ये इनका नाम था डॉक्टर क्लॉडियस बुचनन। ये एक ब्रिटिश मिशनरी थे, ये मैं 7 गोस्वामी अभी कुछ दिन पहले जस्ट पढ़ा था, भक्तिनाथ ठाकुर जी का जो कृपा तिथि थी उसके प्रीफेस में बड़ा अच्छा लिखते हैं एक चीज़। ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश मिशनरी, पहले ब्रिटिश मिशनरी थे, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ही सेज द होल हिस्ट्री ऑफ द फेमस गॉड कृष्णा इज वन ऑफ लस्ट, रॉबरी, डिसीट एंड मर्डर। द हिस्ट्री ऑफ द होल हायरार्की ऑफ हिंदुइज्म इज वन ऑफ शेमफुल इनक्यूटी, टू वाइल्ड टू बी डिस्क्राइब्ड। कहने का अर्थ है कि एक साधारण बुद्धि से अगर भगवान को देखें, भगवान को समझने का प्रयास करें तो भगवान के सारे लीलाओं में आपको ना क्या दिखेगा, लस्ट, पूरी काम भावना से भरा हुआ है, 16,108 रानियाँ, गोपियों के साथ रास नृत्य, लगेगा ये तो कैसे भगवान हो सकते हैं, ऐसा व्यक्ति संभव नहीं है। रॉबरी, हाँ अपने रॉबरी में, वैसे रॉबरी का मेरे को पास में याद तो नहीं आ रहा, बट हाँ मर्डर्स तो हैं ही, मर्डर्स ही अच्छे खासे हैं, अपने मामाश्री मामा को उन्होंने हत्या करके मथुरा में, उसके बाद फिर मथुरा का शासन उग्रसेन को देने के बाद फिर द्वारका में भगवान ने अपना वो बनाया था। डिसीट, धोखा भी है कहीं ना कहीं भगवान के पास टाइम में, और मर्डर भी है, भगवान के जो सेकंड वो थे ससुर लगेंगे जो सत्यभामा के पिता, उनकी हत्या, एक अच्छा खासा वो प्लॉट है जिसमें उनकी हत्या हुई थी। तो ये जब सारा पास टाइम पुराणों में देखते हैं भगवान का, तो भगवान को सुप्रीम मानना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही असंभव होता है कि भगवान सुप्रीम हो सकते हैं, नारायण हो सकते हैं, रामचंद्र भगवान हो सकते हैं, और भगवान नारायण के अलग अलग विस्तार हो सकते हैं, लेकिन लेकिन भगवान कृष्ण नहीं हो सकते। तो इसके संदर्भ में जीव गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे एक एनालिसिस दिए, जो मैं आपको वर्ड्स बता रहा था, एते चंश कलपम स कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उस वर्ड्स के ट्रांसलेशन में श्री प्रभुपाद जीव गोस्वामी जी के तत्व संदर्भ से एक सेक्शन कोट करते हैं और उसमें बताते हैं कि क्यों कृष्ण सुप्रीम है, कई सारे रीजंस में दिए हुए हैं। एक रीजन और है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम को आप स्टडी करें या श्रीमद् भागवतम को आप एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम जो है वो पूरी की पूरी तरीके से एक कंक्लूजन है पूरे के पूरे वैदिक शास्त्रों का। इसका और डिटेल डिस्क्रिप्शन आप प्राप्त करते हैं तत्व संदर्भ में, जब श्रील जीव गोस्वामी ने उसको दो खंड में लिखा है, एक प्रमाण खंड और एक प्रेम खंड। उसमें बताते हैं कि एक्चुअली जब सारे स्क्रिप्चर्स, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इन सबका बीच में ना जब बहुत तर्क होते हैं आपस में, कि बहुत सारे इनके बीच में आपस में तर्क हैं टू एस्टैब्लिश द एब्सोल्यूट, कंक्लूजन करने के लिए कि कंक्लूजन है क्या। सब कुछ एनालाइज करने के बाद शिवजीव गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम इज द फाइनल जजमेंट। तो श्रीमद् भागवतम है ना, वो फाइनल जजमेंट है, इज द ओनली एंड ओनली कंक्लूजन ऑल द स्क्रिप्चर्स श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम का जो प्रभास सूत्र बोला जाता है, ये यही वर्ष है, एत चंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं हाँ इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदंती युग युगे। पॉइंट इज लॉर्ड कृष्णा इज सुप्रीम ऑन वॉट ग्राउंड्स, ऑन वॉट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ शास्त्रस, शास्त्रों के आधार पे भगवान सुप्रीम है। इसकी पूरी की पूरी विवेचना, इसका पूरा विश्लेषण हमारे गोस्वामी ने बहुत डिटेल में कर रखा है। इस कारण से भगवान कृष्ण को सुप्रीम मानते हैं, दैट्स द ओनली रीजन वाई गौड़ीय वैष्णविज्म में भगवान को कृष्ण को, आई डोंट से ओनली इन गौड़ीय वैष्णविज्म, इट्स नॉट अ प्रॉपर वर्ड, बट द पॉइंट इज एक्चुअली कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान है ही, ये खाली किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय या पर्टिकुलर कल्ट का एक मत नहीं है, ये है ही, इज द सुप्रीम, इज द कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। फर्दर ये थोड़ा सा टेक्निकल है तो थोड़ा सा क्षमा करिएगा अगर कुछ ज़्यादा वैसा हो रहा है तो, बट पूरा कंटेंट ही ऐसा है। तो इसके आगे इन द फर्दर सेक्शन वेंकट भट्ट बोल रहे हैं, दिस इज ही इज कोटिंग, ये कोट कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु के फर्स्ट 1.2.59 से, कह रहे हैं कि दिव्य अनुभूति के अनुसार नारायण तथा कृष्ण के स्वरूपों में कोई अंतर नहीं है, किंतु कृष्ण में माधुर्य रस के कारण विशेष दिव्य आकर्षण है, अतः वे नारायण से बढ़कर हैं, यह दिव्य रसों का निर्णय है। तो ये जो कोट किया था वेंकट भट्ट ने, ये भक्ति रसामृत सिंधु से कोट किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, इसका जो वर्स 7.2.59 इसमें जस्ट वन मिनट, हाँ ये वर्स मैं आपको पढ़ देता हूँ एक बार। सिद्धांतस्ते विदेपि श्रीष्ठ कृष्ण स्वरूपयो रसे नोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेश रसस्थिति। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जब डिस्कशन होगा महाप्रभु और वेंकट भट्ट के बीच में, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्स कोट किया था वेंकट भट्ट ने, उसमें ये बताना चाह रहे हैं कि सिद्धांत की दृष्टि से भगवान और भगवान के जितने भी स्वांश हैं, जितने भी अवतार हैं भगवान के, उनमें कोई भेद नहीं होता है सिद्धांत की दृष्टि से। सिद्धांत की दृष्टि से आप विष्णु, नरसिम्हा, वामन, अलग अलग जितने भी इनकारनेशन हैं वो ले लीजिए, भगवान कृष्ण को ले लीजिए, भगवान श्री रामचंद्र को ले लीजिए, इनमें सिद्धांत की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। लेकिन इनमें भेद कहाँ पे है ये बता रहे हैं, रस की दृष्टि से भेद है, रस की दृष्टि से, रस तत्व में भेद है, सिद्धांत की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। अब ये क्या होता है, कई बार समर जब भक्त इसको आधा अधूरा पढ़ते हैं, आधा अधूरा लेते हैं, तो ये चीज़ें इंटरमिक्स कर जाती हैं, और कहीं ना कहीं ये हमें सुपीरियर एस्टैब्लिश करती है और संप्रदायों से। तो कहीं ना कहीं अगर कहीं वार्ता हो या कुछ कन्वर्सेशन हो या डिबेट हो, तो हमारे पास बोलने को काफ़ी कुछ हो जाता है कि हाँ हमारा जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है सबसे महान संप्रदाय है, सबसे महान संप्रदाय इसलिए है क्योंकि भगवान कृष्ण की हम पूजा करते हैं इसमें, और इससे ज़्यादा और महान इसलिए क्योंकि हम महान हैं इसलिए भगवान कृष्ण की वर्षिप करते हैं इसलिए ये है। बट ये रस तत्व और सिद्धांत के आधार पर देखना जरूरी है कि सिद्धांत के आधार पर ये बराबर है, लेकिन रस के आधार पे थोड़ा सा भेद है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, रस में जाने से पहले सिद्धांत का स्पष्टीकरण बहुत ज़रूरी है। हाँ द अंडरस्टैंडिंग बेसिकली जो समझ है सिद्धांत की, वो ज़्यादा ज़रूरी है रस तत्व में जाने से पहले। इसका एक पास टाइम आता है श्री प्रभुपाद जी के साथ, प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी ये जो राधा रानी हैं और बलराम हैं इनके बीच में क्या संबंध है आपस में, ये अब तक कहीं कोई विश्लेषण इसका कहीं नहीं आया, भागवतम में कहीं नहीं देखा, भक्ति रसामृत सिंधु वगैरह में कहीं ऐसा कुछ एनालिसिस नहीं किया हुआ है कि श्रीमती राधा रानी और बलराम जी में क्या वो है। तो प्रभात ने बहुत ही ब्लंट रिप्लाई दिया, वो था कि फर्स्ट नो द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सोल एंड देन टॉक अबाउट बलराम एंड राधा रानी। पहले शरीर और आत्मा में भेद समझना जरूरी है, उसके बाद जरूरी है ये समझना कि राधा रानी और बलराम जी में क्या फर्क है, क्योंकि टिल द टाइम यूर इन द बॉडली कंसेप्शन ऑफ लाइफ, तब तक शारीरिक चेतना में है, तब तक इस चीज़ को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि क्या फर्क है, क्या रसों का क्या मतलब आदान प्रदान है, क्योंकि आगे भी इसमें पूरा रस पे विचार होगा। आगे कहते हैं वेंकट भट्ट, लक्ष्मी जी ने विचार किया कि उनकी पवित्रता धर्म कृष्ण के साथ उनका संबंध होने से नष्ट नहीं होगा, प्रत्युत कृष्ण की संगति करने से वे रास नृत्य के लाभ का आस्वादन कर सकेंगी। वेंकट भट्ट ने आगे बतलाया, माता लक्ष्मी दिव्य आनंद की भोक्ता भी हैं, अतएव यदि उन्होंने कृष्ण के साथ भोग करना चाहा तो इसमें कौन सा दोष है? आप इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? ये चैतन्य महाप्रभु को बोला कि आप इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? अगर वो दिव्य रस का आनंद करना चाहती हैं, दिव्य रस का आनंद लेना चाहती हैं भगवान कृष्ण के साथ, तो इसमें इतना गलत क्या है? अब इस पूरे कंसेप्शन में आप देखिएगा बार बार महाप्रभु इस बात को क्यों उठाए थे, इसका रीज़न क्या था? उठाने का रीज़न ये था कि वेंकट भट्ट जो शिव संप्रदाय से बिलोंग करते थे वहाँ पे लक्ष्मी नारायण को ही सबसे सुप्रीम माना जाता है वर्शिप में, लेकिन महाप्रभु इस चीज़ को शास्त्रों के आधार पर एस्टैब्लिश करना चाहते थे कि नहीं, जो राधा कृष्ण की वर्शिप है विच इट इज़ मच मोर हायर देन द वर्शिप ऑफ लक्ष्मी नारायण, लेकिन क्योंकि वो राग मार्ग में आती है इस कारण से उसको थोड़ा सा समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है उसको। तो वेंकट भट्ट लेकिन ये समझ रहे थे कि जो कृष्ण है और जितने भी और अवतार होते हैं वो नारायण का विस्तार है, लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, वो सारे एक्चुअली कृष्ण का अवतार है, कृष्ण इज द सोर्स एंड ऑल अदर्स आर द एक्सपेंशंस, बट वेंकट भट्ट का कंसेप्ट है नारायण इज द सोर्स एंड ऑल अदर्स आर द एक्सपेंशंस, ये डिफरेंस है अंडरस्टैंडिंग में। इसी चीज को श्री चैतन्य महाप्रभु एस्टैब्लिश करें, इवन आगे जितने प्यार आएंगे ना उसमें और कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, आगे आता है। लेकिन इसमें एक चीज और, शिष्टाचार का बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जितनी टॉक हो रही है वेंकट भट्ट और अपने ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बीच में, वो सारी टॉक में महाप्रभु ने सारी बात बहुत मजाक में डील कर रहे हैं, बहुत मजाक में लाइटली वेंकट भट्ट के साथ, क्योंकि वेंकट भट्ट उनके कंटेम्प्रेरी और इवन उनसे सीनियर हैं उम्र में, लेकिन कहीं से भी अपनी सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फिर आगे कहते हैं महाप्रभु, मुझे पता है कि लक्ष्मी जी में कोई दोष नहीं है, फिर भी वह रास नृत्य में प्रविष्ट नहीं हो पाई, प्रमाणिक शास्त्रों में हम ऐसा सुनते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अब कोट कर रहे हैं इस 121वें पयार में एक भागवतम का वर्ष दशम स्कंध से 47वें अध्याय से, ये वर्ष है, इसका ट्रांसलेशन है, जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला में गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे तब उन्होंने गोपियों को अपने ही बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया, वह दिव्य कृपा लक्ष्मी या वैकुंठ की अन्य प्रेयसियों को प्राप्त नहीं हो पाई, नहीं स्वर्गलोक की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों ने, जिनकी शारीरिक कांति तथा सुगंध कमल पुष्प जैसी होती है, कभी इसकी कल्पना की तो भला संसारी स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए, चाहे वो भौतिक अनुमान से कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। तो ये एक बहुत कल्पना से परे है, किन लोगों के लिए, स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं, वैकुंठ के जो और भी दासियां हैं लक्ष्मी जी की, ये इन लोगों के लिए, इवन इस भौतिक संसार, इस संसार की जो अन्य साधारण स्त्रियां हैं उनके लिए भी ये बहुत ही मुश्किल है समझ पाना और इवन प्रवेश कर पाना उस स्थान में जो स्थान गोपियों का है। ये गोपियों का स्थान बहुत ऊँचा है जहाँ पर उनको ये भगवान का इतना करीबी संग मिल पाया। आगे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स कोट करेंगे, कह रहे हैं महाप्रभु, किंतु ये 122वां प्यार है, किंतु क्या आप मुझे बता सकेंगे कि लक्ष्मी रास नृत्य में क्यों प्रवेश नहीं पा सकी? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेंकट भट्ट से पूछ रहे हैं क्यों नहीं पा सकी लक्ष्मी में ऐसा क्या था जो लक्ष्मी इस रास नृत्य में नहीं एंटर कर पाई, कैसे क्या चीज थी? इवन बताते वैदिक ज्ञान के अधिकारी नृत्य में प्रवेश करके कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सके एक्चुअली क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैदिक ज्ञान को क्यों महाप्रभु यहाँ कोट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका एक रेफरेंस भी अभी आएगा थोड़ा सा, ये और टेक्निकल है, ये चैप्टर है प्रेयर्स बाय द पर्सोनिफाइड वेदास, ये वेदों का मूर्तिमान स्वरूप, ये 87वां चैप्टर है, 87वां अध्याय है दशम स्कंद का, जिसको आप जिन भक्तों ने पढ़ा होगा आप जानते होंगे इस चैप्टर को। चैप्टर के कृष्णा बुक में ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने किए थे, 60 पेजेस में ट्रांसलेशन है, और प्रेयर्स ही प्रेयर्स है, टेक्निकली टेक्निकल है, और उसमें अगर समझना है मुझे अंदर तो बिल्कुल भी कुछ पता नहीं पड़ता एक सेंस में, प्रेयर्स बाई प्रेयर्स 60 चैप्टर्स ऑफ कृष्णा, 60 पेजेस ऑफ कृष्णा बुक खाली इसका ट्रांसलेशन है जो प्रभुपाद ने किया था इस चैप्टर का, प्रेयर्स बाय द पर्सोनिफाइड वेदास, 10th कैंटो 87 चैप्टर, वहाँ से श्री चैतन्य महाप्रभु ये वर्स कोट कर रहे हैं जो 123 वो है प्यार है। बड़े बड़े ऋषि योगाभ्यास तथा श्वास नियंत्रण द्वारा मन तथा इंद्रियों को जीतते हैं। इस तरह योग में रत रहकर तथा अपने हृदयों में परमात्मा का दर्शन करते हुए वे निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, किंतु भगवान के शत्रु भी मात्र उनके बारे में सोचने के द्वारा वही पद प्राप्त करते हैं। किंतु कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट होकर व्रज की गोपियां कृष्ण तथा उनकी सर्प जैसी भुजाओं का आलिंगन चाहती है। गोपियों को अंततः भगवान के चरण कमलों का अमृत आस्वादन करने को मिला। इसी प्रकार हम उपनिषद, ये उपनिषद कौन सा है ये उसके परपट में बता रहे हैं, ये गोपाल तापनी उपनिषद है जो ये प्रार्थना कर रहे हैं। हर उपनिषद, हर पर्टिकुलर वेद अपनी अपनी एक प्रार्थना इस चैप्टर में, इस अध्याय में अर्पित कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार हम उपनिषद भी गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए भगवान के चरण कमलों का अमृत आस्वादन कर सकते हैं। तो आगे कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा ये पूछे जाने पर कि रास नृत्य में लक्ष्मी क्यों प्रवेश नहीं कर पाई जबकि वैदिक ज्ञान के अधिकारी कर पाए, तब वेंकट भट्ट ने उत्तर दिया, मैं इस बर्ताव के रहस्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ वेंकट भट्ट ने अपनी एक हार स्वीकार की। हाँ, क्या हार स्वीकार की कि बिल्कुल मैं ये नहीं समझ सकता कि जो वैदिक ज्ञान के अधिकारी हैं वो तक रास में प्रवेश कर पाए, लक्ष्मी नहीं कर पाई। मतलब बहुत सरप्राइजिंग है, लक्ष्मी नहीं कर पाई लेकिन ये वेद प्रवेश कर गए। अब ऐसा वेद में क्या है? अगर आप प्रथम स्कंद भागवतम का देखें पांचवा अध्याय, तो उसमें नारद मुनि और व्यास देव के बीच एक बड़ी अच्छी वार्ता आती है। उस वार्ता में नारद मुनि व्यास देव को बताते हैं कि आपकी जो शास्त्रों में कमियां कहाँ हैं, कमियां निकालते हैं कि शास्त्रों में कहाँ कहाँ क्या कमियां रह गई थी, और फिर बताया था कि आपको ये भागवत पुराण क्यों रचना चाहिए, किस लिए रचना चाहिए। तो उसमें एक रीज़न नारद मुनि बताते हैं व्यासदेव को कि आपने जो वेदों में लिखा है वो आपने पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ बता दिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष बता दिए, वेदों का यही पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैटर है। इवन अगर आपने उपनिषद भी रचे तो उसका भी जो गोल था वो इम्पर्सनल ब्राह्मण है। हाँ, इम्पर्सनल ब्राह्मण हाँ, निराकार निर्विशेष तत्व जो भगवान का होता है उसका व्याख्या उपनिषदों में बहुत ज़्यादा किया आपने, निर्विशेष ब्रह्म की प्रव्याख्या की है आपने, आपने ये विचार पुरुषार्थों का वर्णन किया है, लेकिन जो सबसे परम पुरुषार्थ है प्रेम पुमार्थो महान, उसका वर्णन आपने कहीं नहीं किया। इस कारण से श्रीमद् भागवतम को आप लिखिए। इवन उस कैटेगरी तक जिसमें कि व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म का जो कंक्लूजन है उसको समझने के लिए, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयासरत होते हैं। इवन उसमें डिस्क्रिप्शन देखेंगे जो अष्टांग योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, योगाभ्यास के द्वारा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश कर जाएं। स्तुतियाँ, जो वेदों की स्तुतियाँ हैं उपनिषद हैं खास करके, वो भी उनका कंक्लूजन भी यही है। लेकिन वो जो उपनिषद हैं वो उपनिषद क्या कह रहे हैं कि अगर हम इन गोपियों का, ये जो भगवान की जो सबसे परम भक्त हैं गोपियाँ, इनके चरणों की रज या इवन इनके चरणों को फॉलो करते हुए अगर हम चले जाएं तो हम कृष्ण की उस प्रेमय भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जो अन्य किसी प्रोसेस से फॉलो करना या प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि व्रज की गोपियों का अनुगमन किए बिना भगवान की इस प्रेम भक्ति को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, असंभव है एक तरीके से, आप उसमें जा भी नहीं सकते। और यही एक पॉइंट था, यही एक आप कह सकते हैं छोटा सा एक डिफेक्ट था जिसके कारण लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर पा रही थी भगवान के रास नृत्य में। लक्ष्मी अपने वैकुंठ के ऐश्वर्य का भाव त्याग नहीं पा रही थी। जब अपने वैकुंठ का जो ऐश्वर्य का भाव त्याग नहीं पा रही थी, गोपी के अनुगत नहीं हो पा रही थी, इस कारण से उनका रास में प्रवेश बहुत मुश्किल था। दो, वो बहुत तपस्या भी की। बिल्वा वन अगर आप जाएं, 12 वनों में से एक बिल्वा वन आता है स्थान, वहाँ बताते हैं कि वहाँ पे आज भी लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही हैं भगवान की। बिल्वा वन, बिल्वन विषय में बिल्वा बिल्वा वन बिल्वन सो वही स्थान है जहाँ पे लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं और काफ़ी वर्षों से, काफ़ी सालों से तपस्या कर रही हैं ताकि भगवान की कृपा दृष्टि हो, कृपा प्राप्त कर सकें और वो रास नृत्य में प्रवेश कर सकें। लेकिन क्या पॉइंट है वहाँ पे कि बस गोपियों के अनुगत नहीं हो पा रही, गोपियों के अनुगत नहीं हो पा रही, इस कारण से प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इवन देर इज अ सेक्शन, इसमें बृहत भागवत अमृत में अगर आप पढ़ेंगे, जब नंद कुमार जब अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जर्नी में जाते हैं तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जर्नी में बड़ा एक सिग्निफिकेंट पॉइंट ये भी मेंशन करते हैं कि जब भी कोई भक्त इस प्रोसेस से जुड़ते हैं, इस प्रोसेस में लगते हैं, तो इस प्रोसेस में लगने के बाद हमारा जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर हमारा अगर कहीं ट्रांसफर होता है तो पहले किसी भौम वृंदावन में होगा, वहाँ पर होगा जहाँ पर कहीं भगवान की लीलाएं चल रही होती हैं इस पूरे यूनिवर्स में, इस भौतिक संसार में जहाँ भगवान की लीलाएं चल रही होती हैं वहाँ पे हमारा जन्म। और वो भी कहते हैं अगर इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द गौड़े वैष्णव जो ट्रेडिशन, जो महाप्रभु के देव हुए पथ को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, उसको पालन कर रहे हैं, तो वो भी किसी गोपी के घर में या गोपी के शरीर में जन्म मिल सकता है आपको भौम वृंदावन। वहाँ पर एक प्रैक्टिस सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन वो होगा, उसके बाद देन विल बी ट्रांसफर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, फिर वह आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन में ट्रांसफर होता है। तो ये सारे पॉइंट्स ये एम्फोसाइज कर रहे हैं एक्चुअली, अगर आप इसको ध्यान से देखें कि गोपियों या व्रज की गोपियों के अनुगत हुए बिना भगवान के धाम, इवन भगवान के धाम से ज़्यादा और महत्वपूर्ण है भगवान के जो बहुत ही अंतरंग पास टाइम्स हैं, खासकर रासलीला, उसमें प्रवेश कर पाना बहुत मुश्किल है। लक्ष्मी जी यहीं पे जाके रुक गई। तो आखिरी के जो 10 मिनट हैं, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करूँगा, ये अनुगत होना, ये अनुगत का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो इसमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो उपदेशामृत ग्रंथ है उसमें 8वें वर्ष में बताते हैं कि जो 8वां वर्ष है वो भाव भक्ति के लक्षण को प्रकट करता है कि वो होते क्या उसमें। तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आता है, बताते हैं तिष्ठान व्रजे तत् अनुराग जनानुगामी। हाँ, कि एक लक्षण ये होता है कि व्रज में निवास करते हुए व्रज के ही किसी एक भगवान के नित्य पार्षद के अनुगत होके ही आप भक्ति कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, एक मेंटल कंसेप्शन रहता है कि भाव भक्ति में जाने के बाद कहीं ना कहीं द पर्सन इज इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र मानसिकता हो जाती है कि स्वतंत्र हो के हम भगवान की आराधना कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन भाव की अवस्था में भी अगर ध्यान देना तो स्वतंत्रता नहीं होती है कहीं से, वहाँ पे भी क्या है अनुगत अनुरागी जनानुगामी, वहाँ भी अनुगत होकर ही सेवा होती है ना, वहाँ भी अनुगत होना पड़ता है। वहाँ भी ये नहीं है कि डायरेक्टली वी कैन अप्रोच कृष्णा। हम रोज सुबह तुलसी आरती में ये गाते हैं ना, ए निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, सखीर अनुगत करो, दैट इज व्हाट वी ऑल एस्पायर कि हमें उनकी अनुगत हो के वो भक्ति प्राप्त हो, अनुगत होना। अब उसकी डिटेल में अगर आप स्टडी करें उस प्रपट को, तो प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं उसमें कि अनुगत होने का क्या अर्थ है, किसको अनुगत होना है, और वो वृंदावन व्रजवासी कौन है, कहाँ वृंदावन जाना है, राधा कुंड जाके वहाँ पे जाके किसी से अनुगत होके करना है कि वो कहीं भी हो सकता है। सो इसमें डिटेल मेंशन कर रहे हैं श्री प्रभुपाद, पूरा साधना भक्ति से लेकर भाव भक्ति तक का डिटेल मेंशन कर रहे हैं। उसे मेंशन कर रहे हैं कि एक्चुअली व्हाट इज दिस व्रज, व्रज भक्त, इसके कहने का अर्थ क्या है। द पॉइंट इज द पर्सन हु कैरीज कृष्णा विद इन हिज हार्ट, द वृंदावन धाम इन हिज हार्ट, जो कृष्ण को अपने हृदय में कैरी करते हैं, अपने हृदय में साथ लेके चलते हैं और वृंदावन धाम को साथ लेके चलते हैं हृदय में, दो आर द पीपल, वो लोग हैं जो कि एक्चुअली व्रजवासी हैं, दे आर द पीपल। और उसमें एक भक्त इसी के संदर्भ में भी बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद इज द वन ऑफ द फोरमोस्ट व्रजवासीज हमारे लिए, वृंदावन के जो व्रजवासी हैं वो हमारे लिए श्रील प्रभुपाद हैं, कि प्रभुपाद ने हमें वो अनुगत होने का प्रिंसिपल बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया हुआ है अपने शास्त्रों में, अपने पुस्तकों में, अपने टीचिंग्स में कि अनुगत है क्या। और ये पूरे के पूरे शास्त्र भगवद्गीता श्रीमद् भागवतम जितने भी आप पढ़ेंगे उनमें समय देखेगा, बहुत डिटेल में प्रभुपाद ने इसको एलैबोरेटली समझा रखा है कि अनुगत होने का क्या अर्थ है, अनुगत होने का क्या मतलब होता है, हाउ डू वी टेक शेल्टर ऑफ। और इसमें एक लास्ट एलिमेंट और आता है इन द होल डिस्कशन दैट यस, मैंने आपको बताया था कि भाव भक्ति में इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द स्टेट ऑफ भाव भक्ति ऑल्सो वन शुड टेक द एक्चुअली वन हैज टू टेक द शेल्टर ऑफ, इसको शेल्टर लेनी पड़ती है इसी ऐसे भक्त की, ऐसे परिकर की भगवान की जो कि भगवान की नित्य सेवा में पूर्ण रूप से लगा हुआ है, दैट इज द स्टेट इन द भाव भक्ति ऑल्सो। सो दैट वॉज वन ऑफ द यू कैन से थिंग, वो एक ऐसी चीज थी जो मिस हो रही थी लक्ष्मी जी से, जिसके कारण वो इस रास नृत्य में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। और फिर आगे जो डिस्कशन आएगा ये काफ़ी अच्छा डिस्कशन आएगा, जिसमें कि महाप्रभु ये भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि गोपियों को नारायण का भी स्वरूप दिखा था जब भगवान रास नृत्य छोड़ के चले गए थे और फिर नारायण के एक रूप में आगे खड़े हो गए थे। तो गोपियों ने बोला, अरे आपने क्या भगवान को देखा है, कृष्ण को देखा है, कृष्ण इधर से गुजरे थे, कृष्ण को देखा आपने। तो कहने का अर्थ है गोपियों को नारायण के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं था, लेकिन लक्ष्मी को आकर्षण है भगवान श्री कृष्ण से। तो दैट वाज द सेम सब्सटेंस, थोड़ा सा तरह टेक्निकल था ये मैटर, तो मैंने जितना संभव हुआ प्रयास किया इसको प्रिपेयर करके प्रेजेंट करने का। आखिरी के 5 मिनट हैं तो स्वाभाविक है, तब कोई प्रश्न है तो